गाथा, रूह वही रूप नया।
कुछ ऐसे रिश्ते जो बेवजह ही कले का फंदा बन जाते हैं और फिर खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ही दिल के किसी गहरे कोने में अपनी पैठ बना जीवन का जरूरी अंग बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ ज्योत्सा सिंह की कहानी फंदे में सुनते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा है ज्योत्सा सिंह ने अपनी कहानी फंदे में। गाथा में आज प्रस्तुत है ज्योत्सा सिंह की लिखी कहानी फंदे। सगी तो वह किसी की भी नहीं थी, शायद इसलिए कि उनके सगे वालों ने उन्हें दगा दिया था, पर हमारे घर में हम सब उन्हें मान देते, या यूं कहिए कि हमारे पापा जी हम सब से उन्हें सम्मान दिलवा लेते थे। मजाल क्या कि वह घर का एक दिन का भी हिला दे, बस बैठी बैठी मोहल्ले भर का स्वेटर बुनती रहती और हमारी मम्मी पर हुक्म चलाती रहती। अरे मुन्नू की बहू, चाह में चीनी कम रह गई, जरा एक और चाह बना दो। या फिर रोज रोज ये साग पात ना खाया जाता हमसे मुन्नू की बहू, अरे कभी कभी बेसन गट्टे या कमल ककड़ी के कोफ्ते बना लिया करो, जहका बदल जाए मुंह का। और फिर मुन्नू को भी तो पसंद है ये सब, पर तुम लोगों से तो ना धेले का काम नहीं होता, रोज रोज वही सब कुछ। और फिर उनके होंठ स्वेटर की डिजाइन के उल्टे सीधे फंदे को गिनने में व्यस्त हो जाते, और मम्मी पापा जी की वजह से अपने गुस्से को गर्म कढ़ाई में छोंक देती। पापा जी मम्मी को प्यार से समझाते, अच्छा बताओ और है कौन उनका, बोलो तो जरा, किस पर दिखाएं वो अपना हक। अरे यार तुम सुन लेती हो तो बोल लेते हैं, मत परेशान हुआ करो, आखिर बड़ी हैं। मम्मी भी मूड ठीक होता तो हंस देती और शाम तक या दूसरे दिन तक उनकी फरमाइश जरूर पूरी कर देती, और यदि गुस्सा चढ़ा होता तो पापा को ही आड़े हाथों लेते हुए कहती, मुन्नू मुन्नू आपको कहती हैं तो आप ही सुनो और सहो अपनी दिद्दा के ये चोचले, हमसे ना होती इतनी गुलामी, आखिर हम भी 50 के होने जा रहे हैं, पर इनकी निगाहों में ना मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो पापा जी की दिद्दा थी और हम सबकी दिद्दा बुआ जी। पापा जी के गांव से यानी कि हमारी ददिहाल से थी दिद्दा बुआ जी। नाम क्या था उनका कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी, बस उनकी इतनी सी कहानी ही हम दोनों बहनों को मालूम थी, और वह भी मम्मी ने एक बार हम लोगों को चुपके से सुनाई थी। बुआ जी शादी के 3 साल बाद अपने पति से झगड़कर मायके चली आई, और फिर ना ससुराल से बुलावा आया ना ये खुद गई, और मायका बस नाम का ही मायका था, माता पिता थे ही नहीं, वह भाई भाभी का घर था, फिर काहे का मायका। किसी ने उनकी परवाह ना की, पर बुआ भी गुरूर से भरी बैठी रही और मायके की देहरी की धूल बन गई, और फिर धीरे धीरे वह घर के लोगों की आंख की किरकिरी भी बनने लगी, क्योंकि दिद्दा बुआ के मुंह का स्वाद जितना चटपटा था जुबान उतनी ही कसैली थी, जब बोलती तो कड़वा ही बोलती। फिर भला भाभी क्यों ये सब सहती, और वो भी जब जब पता हो कि वो जीवन भर का रोग है। एक बार बुआ जी सर्दियों में सख्त बीमार पड़ी, तब हमारे पापा जी गांव में ही थे, वह उन्हें इलाज के लिए अपने साथ लखनऊ क्या लेकर आए कि दिद्दा बुआ को अवध की नवाबी जम गई और वह हमारे ही घर में मुस्कुराने लगी और हम सबके गले का फंदा बन गई। उनकी टीका टिप्पणी से हम सभी आहत रहने लगे। उनका बस एक ही सबसे बड़ा फायदा मिलता था हम सबको, वह यह कि सर्दी आते ही आप उनसे अपने मन पसंद डिजाइन के स्वेटर बुनवा लो। उसमें भी उनकी एक शर्त रहती थी, वह ये कि सर्दी शुरू होने पर सीजन का पहला स्वेटर वह मुन्नू के लिए ही बनाएंगी, फिर चाहे तो पूरा मोहल्ला उनसे स्वेटर बनवा ले। दिसंबर ने आधे से ज्यादा मंजिल पार कर ली थी। वह रोज ही और ज्यादा सर्द हो रहा था और नए साल से मिलने की उमंग में अपना दिन छोटे किए दे रहा था। पर आजकल मैं दिद्दा बुआ से खुश थी, क्योंकि आजकल उनकी सिलाइयों में मेरे स्वेटर के फंदे पड़े हुए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि पहली तारीख को मैं ये नया स्वेटर पहनकर अपने कॉलेज जा सकती हूँ। और स्वेटर के मामले में दिद्दा बुआ ने जो तारीख दे दी वह तारीख कोर्ट की तारीख होती थी। आजकल वह मुझे जब भी आवाज देती मैं बिना ना नुकुर किए उनके पास पहुंच जाती और उनके बताए काम को करके उन्हें ये याद दिला देती कि देखो बुआ जी, मेरी डिजाइन बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पूरे मोहल्ले भर में आपने बना रखी है वही मेरे स्वेटर में हो, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग सी। बुआ क्या समझती नहीं पता, पर उनकी बुनाई सच में बहुत यूनिक होती थी। वो जिस डिजाइन को एक बार बनाती दोबारा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही बनाती। मैं और कॉलोनी का ही मेरा एक दोस्त उस दिन हमारे कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। मेरी छोटी बहन अपनी सहेली के घर गई हुई थी कि तभी दिद्दा बुआ जी स्वेटर के नाप लेने के लिए धड़धड़ाते हुए हमारे कमरे में घुसी चली आई। और फिर तो उन्होंने जो कहर बरपाया कि बाप रे बाप। अपने दोस्त को तो मैंने जल्दी से उसके घर वापस भेज दी और मम्मी के पास जाकर खूब रोई। मेरा रोना देखकर मम्मी का पारा भी सातवें आसमान पर। मम्मी ने भी आज बुआ को खूब खरी खोटी सुनाई। इस तरीके का नहीं रह गया है जमाना, बैठ के सब बच्चे साथ पढ़ते हैं, बात को कहां का कहां ले जाती हैं आप। पर बुआ का विकराल रूप मेरी धज्जियां उड़ाने पर लगा हुआ। शाम को पापा जी के आते ही मम्मी और मैंने पापा को पानी दिए बिना ही घर के बिगड़े माहौल के बारे में इस तरह अवगत कराया कि पापा जी मेरे सर पर लाड़ का हाथ रख गुस्से से दिद्दा बुआ के कमरे में गए और दिद्दा कुछ बोलती उससे पहले ही बोले, दिद्दा मेरी दोनों बेटियां मेरा गुरूर हैं, उन पर ऐसे लांछन कोई लगाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, कल मैं गांव जा रहा हूं, आप अपना सामान बांध लो, आपको आपके घर छोड़ दूंगा। दिद्दा बुआ जी जस की तस बैठी रह गई, उनके मुंह से एक भी बोल ना फूटा। पापा जी उनके कमरे के बाहर आकर भी बड़बड़ाते ही रहे। मैं अपनी जीत पर खुश थी, फिर भी मेरा मन परेशान था, पता नहीं क्यों, शायद अपने अधूरे स्वेटर को लेकर। पर खुद को ही समझाते हुए सोचा, चलो अच्छा है, इनकी रोका टोकी से तो छुट्टी मिलेगी। रात को खाने में सब कुछ था, पता नहीं क्यों स्वाद नहीं था। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि इस बेवजह के रिश्ते का नमक ज्यादा था या कम हो गया था। बुआ जी ने रोज की तरह ही खाना खाया और अपनी थाली के पैर छूकर हमेशा की तरह उसे वहीं खिसका दिया। मैं थाली उठाने जा रही थी तब मेरे मन में शंका थी कि शायद बुआ जी ने खाना ना खाया हो, पर बुआ जी ने आज भी अपनी थाली से एक एक अन्न का दाना सम्मान के साथ खा लिया। मैं थाली उठा के जोर निगाहों से उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन असफल रही। सारे दिन की उथल पुथल के बाद रात में मैं पढ़ने बैठी तो पढ़ाई में मेरा मन ही ना लग रहा था। किताबें पलटते पलटते रात काफी बीत गई, मैं ना पढ़ पा रही थी ना ही नींद आ रही थी। देर रात मुझे यूं लगा जैसे बुआ के कमरे की लाइट जल रही है। मैंने अपनी खिड़की खोलकर धीरे से उनकी खिड़की की झिर्रियों से झांक कर देखा तो वह मेरा स्वेटर बुनने में लगी हुई थी। मेरी आंखें ना जाने क्यों नम हो गई और मैं चुपचाप अपनी बहन से चिपक कर सो गई। आज की सुबह रोज की तरह ना थी, कुछ सन्नाटा सा पूरे घर में पसरा हुआ था। पापा जी गांव जाने के लिए तैयार थे। बुआ भी अपनी प्लास्टिक की बंद वाली डलिया जिसे लेकर वह आई थी और उसे वह कंडिया कहती थी, उसी में अपना बिखरा हुआ सामान समेटे चाय के इंतजार में बैठी थी। मुझे अब सच में बहुत बुरा लग रहा था, बुआ का जाना और वह भी मेरी वजह से। आखिर गलत तो मैं थी ही ना। उस एकांत में हम मर्यादा और विश्वास की वह पतली रेखा पार कर रहे थे जिससे हमारे पापा जी का गुरूर टूट जाता। तभी पापा की आवाज आई, रिक्शा आ गया है, चलिए। बुआ अपनी कंडिया ले उठ खड़ी हुई और मेरे पास आ मुझे स्वेटर देते हुए बोली, धोकर पहनना, बुनाई बैठ जाएगी। मैं फफक पड़ी और बुआ के गले लगकर बोली, बुआ आप पापा के गुस्से से हमें बचा लेना, बस इस बार बचा लेना। अब मैं कभी वैसी गलती नहीं करूंगी, मैं सच में पापा का गुरूर बनकर ही रहूंगी, बस प्लीज आप इस बार मुझे बचा लो। बुआ ने अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, ना बिटिया रोते नहीं, कच्ची उम्र है तुम्हारी, हम ना संभालेंगे तो क्या तुम्हारे पापा संभालेंगे। अरे मुन्नू तो सारा दिन कोर्ट में रहते हैं और तुम्हारी मम्मी चौके में, तो जिम्मेदारी है मेरी तुम सबका ख्याल रखना। अरे तुमने अपनी गलती मानी, बाकी बात हम मुन्नू से कर लेंगे। और दीदा बुआ ने पापा को आवाज दे कहा, मुन्नू रिक्शे पे तुम कोरट चले जाओ, हमें लली का स्वेटर पूरा करना है। पापा मम्मी दरवाजे पे खड़े निश्चिंत से लग रहे थे, पता नहीं दीदा बुआ के रुकने पर या मेरी बात सुनकर। बुआ की सलाइयों में फिर फंदे पड़ने लगे थे और मेरे दिल में चुभ रही सलाइयों से मुझे राहत मिल गई थी। बस यही थी आज की कहानी। गाथा में आज आपने सुनी ज्योत्सना सिंह की कहानी फंदे, जिसे आपके लिए प्रस्तुत किया ज्योत्सना सिंह ने।